ٹھیک ہے چلو کلاس شروع کرتے ہیں. الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفیٰ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ربنا زدنا علما، رب یسر ولا تعسر، وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح. تو پچھلی کلاس کے اندر ہم نے یہ والی حدیث پڑھی تھی، حدیث نمبر 74 روضۃ الطالبین کے حساب سے، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن ابی موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر مثل الحی والمیت. ٹھیک ہے، اس حدیث کے تحت آپ کو بتایا تھا کہ اس سے پچھلی جو حدیث تھی اس کے اندر ذکر لسانی کا ذکر تھا، ذکر لسانی کا تذکرہ تھا، کیونکہ وہاں پر کلام ابن بنی آدم، ٹھیک ہے، کلام ابن بنی آدم، کہ بنی آدم کا کلام جو ہے جو اس کے حق میں ہوتا ہے وہ ذکر اللہ ہوتا ہے اور نہی عن المنکر اور امر بالمعروف ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو وہاں پر کلام کی بات ہو رہی تھی، تو وہ ذکر لسانی مراد تھا، یعنی زبان سے جو ہم ذکر کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ، الحمدللہ، سبحان اللہ، ٹھیک ہے، جو بھی ہم اچھے کلمات کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ذکر میں، ٹھیک ہے، حتیٰ کہ قرآن جو پڑھتے ہیں وہ سب کا سب اللہ تعالیٰ کے ذکر میں آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن وہ ذکر لسانی ہوتا ہے، اور یہاں پر اس حدیث میں 74 میں ذکر قلبی کا ذکر ہے، کا تذکرہ ہے. ٹھیک ہے، یعنی انسان کا قلب بھی ذاکر ہوتا ہے، یہ گویا کہ ایک الگ چیز ہے زبان کے مقابلے میں. ٹھیک ہے، تو مشائخ نے اس کے بارے میں فرمایا، اور یہ بات بالکل آسان ہے سمجھنا، کہ اصل میں جو یاد کا مقام ہوتا ہے نا، ذکر کا مطلب جو ہوتا ہے وہ ایک مطلب اس کا یاد بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ٹو ریممبر سم ون، ٹو بی کانشیس آف سم ون، ٹھیک ہے، اس کو یاد کرنا کہتے ہیں. تو ذکر کا جو لفظ ہے وہ قرآن کے اندر اور حدیث کے اندر یاد کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے، قرآن کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے. ٹھیک ہے، یعنی قرآن کو بھی ذکر کہا گیا. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے جو ہے وہ علم کو بھی، اہل الذکر، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے بھی ذکر کا لفظ استعمال ہوا، لیکن ذکر کا لفظ جو ہے وہ یاد کے لیے بھی استعمال ہوا. ٹھیک ہے، تو یہاں پر جو مراد ہے وہ یاد مراد ہے. تو یاد کا جو اصل مقام ہوتا ہے وہ تو انسان کا دل ہی ہوتا ہے، اس لیے کہ ہم دل میں کسی کو یاد کرتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے مثال دیتے ہیں مشائخ کہ کوئی ماں جب اپنے بچے کو، جو کہ بیرون ملک کام کر رہا ہوتا ہے، فون کر کے کہتی ہے کہ بیٹا آج ہم نے تمہیں بہت یاد کیا، ٹھیک ہے، تو وہ کبھی یہ بھی کہہ دیتی ہے کہ آج میرے دل نے تمہیں بہت یاد کیا، وہ کبھی بھی یہ نہیں کہتی کہ آج میری زبان نے بہت تمہیں یاد کیا، کہ میں سارا دن بیٹا 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 کہتی رہی یا تمہارا نام جو ہے وہ پڑھتی رہی. ٹھیک ہے، تو دل میں یاد ہوتی ہے. تو پھر زبان سے کیا ہوتا ہے، زبان سے جو ہے نا وہ اس یاد کا اظہار ہوتا ہے، کبھی ہوتا ہے اور کبھی نہیں بھی ہوتا، خالی آپ دل میں یاد کر رہے ہوتے ہیں. تو زبان سے اظہار ہونا ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے، لیکن جب دل میں یاد ہوتی ہے نا تو زبان سے اس کا اظہار بھی ہوتا رہتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن اس کے برعکس ایسا ممکن ہے کہ دل میں یاد نہ ہو، صرف زبان پر یاد ہو. ٹھیک ہے، کہ زبان سے جو ہے وہ ذکر کر رہے ہیں، کلمات پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، تسبیح پھیر رہے ہیں، لیکن دل اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ممکن ہے، اور یہ جو ہے وہ ہم اپنی زندگی میں بھی ایکسپیرینس کرتے ہیں کہ ہم اکثر تسبیح پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن ہمارا دل کچھ اور سوچ رہا ہوتا ہے، یا ہمارا دھیان کہیں اور ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے ہم بہت سارے لوگوں کو بھی دیکھتے ہیں، ظاہری طور پر نظر آتا ہے کہ وہ تسبیح تو پڑھ رہے ہیں، قرآن تو پڑھ رہے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ جو ہے وہ گناہ کبیرہ کے مرتکب بھی ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو گناہ کبیرہ کا مرتکب ہونا یا گناہ صغیرہ کا بھی مرتکب ہونا، یہ دل کی یاد کے ساتھ ممکن نہیں ہے. ٹھیک ہے، کہ انسان کا دل اللہ کی یاد میں شاغل ہو، ذاکر ہو، لیکن وہ اللہ کی نافرمانی بھی کر رہا ہو، یہ پاسبل ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ایسا ہو سکے. ٹھیک ہے، تو غفلت جو ہے نا دل کی، یہ دراصل گناہ کا سبب بنتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے ہمیں، ولا تکم من الغافلین، کہ غافلوں میں سے نہ ہونا. ٹھیک ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، غافلوں میں سے نہ ہونا، اور ساتھ ساتھ یہ بھی بہت سارے جگہوں پہ موجود ہے حکم کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہنا. ٹھیک ہے، اور ذکر کی بہت ساری تفصیلات ہیں کہ یہ ذکر جو ہوتا ہے وہ ایسا ذکر یعنی انسان کرے کہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرے. ٹھیک ہے، جیسے اللہ تعالیٰ رجال کا ذکر کرتے ہیں کہ میرے صحیح بندے، اصل بندے، جو کہ جس کو کہتے ہیں نا ہمارے یہاں بندہ کہلانے کے لائق ہیں یا مرد کہلانے کے لائق ہیں. ठीक है, तो उनके बारे में अल्लाह ताला फरमाते हैं ला तुलहीहिम तिजारतुन वला बैउन अन ज़िक्रिल्लाह, कि मेरे रिजाल तो ऐसे होते हैं कि उनको ना तिजारत जो है वो अल्लाह ताला के जिक्र से रोकती है, ना जो है वो खरीदो फरोख्त रोकती है। यानी तिजारत जो है उसको भी जिक्र किया और उसके अंदर से खरीदो फरोख्त का खास जिक्र किया, क्योंकि खरीदो फरोख्त जो है ये तिजारत का एक ऐसा ऐसी शक्ल होती है जिसके अंदर आप जुबान से मशगूल होते हैं, ठीक है। वरना तो बिजनेसमैन जो होता है वो कंप्यूटर के ऊपर भी तिजारत कर सकता है ना, स्टॉक ट्रेडिंग कर सकता है, ठीक है, उसकी जुबान जो है वो खामोश है, ठीक है, तो लेकिन उसकी तिजारत तो चल रही है ना। लेकिन खरीदो फरोख्त का जब काम हो रहा होता है, जब आप कस्टमर डीलिंग कर रहे होते हैं, कस्टमर के साथ इंट्रैक्शन कर रहे होते हैं, तो वो जो है जो अल्लाह ताला के बंदे होते हैं वो उस वक्त भी अल्लाह की याद से गाफिल नहीं होते। क्या मतलब कि उनकी जुबान जो है वो भावताव कर रही है, ठीक है, जो है वो रेट लिस्ट डिसाइड कर रही है कस्टमर के साथ बैठ करके, लेकिन उनका दिल अल्लाह ताला की याद से गाफिल नहीं है, ठीक है। तो ये जो दिल होता है वो जिंदा दिल कहलाने के काबिल होता है। तो कल्बी जिक्र के बारे में फिर जो मशाइख ने फरमाया और हम उसको एक्सपीरियंस भी अल्हम्दुलिल्लाह करते हैं जो भी इस मेहनत के ऊपर लगता है, तो एक्सपीरियंस करते हैं कि कल्बी जिक्र जो होता है ना, यानी जिक्र दिल दिल में अल्लाह ताला को याद करना, इसके फिर दराजात होते हैं, इसके लेवल्स होते हैं, ठीक है। यानी एक लोअर लेवल होता है कि इंसान को कल्बी जिक्र मैसर है, ठीक है, यानी वो कल्ब में अल्लाह ताला को याद करता है, दिल का ध्यान अल्लाह की तरफ रखता है, ये एक लोअर लेवल होता है। फिर एक हायर लेवल होता है, अपर लेवल इसका, और एक जो है तो होता है वो टॉप मोस्ट लेवल होता है। तो तीन दर्जे बयान फरमाए, ये तीन दर्जे क्या होते हैं, ठीक है, कल्बी जिक्र के तीन दर्जे क्या होते हैं, यानी दिल अल्लाह ताला की याद में है, ठीक है, गाफिल नहीं है अल्लाह ताला से, दिस इज कॉल्ड कल्बी जिक्र, ठीक है। तो इसके क्या दर्जे होते हैं, इसके बारे में फरमाया कि पहला दर्जा ये होता है कि जो इंसान दिल में अल्लाह ताला को याद करता है ना, वो इल्म और इरादे से गुनाह नहीं करता, इल्म और इरादे से, यानी बाकायदा प्लान करके वो गुनाह नहीं कर सकता, ठीक है, उससे बशरी तकाजे के तहत जो है वो गुनाह हो तो सकता है, ठीक है। मिसाल के तौर पर इसकी क्या, इसकी एक मिसाल क्या देते हैं कि एक होता है कि जी आप ना प्लान करके घर से निकले हैं कि आप ने कहीं पर ना कोई सुना है कि कोई बड़ी जबरदस्त किस्म की फिल्म एक्ट्रेस की तस्वीर लगाई गई है शहर के अंदर, ठीक है, या कोई एक ऐसा जो है वो यानी बिल बोर्ड लगाया गया है, इलेक्ट्रॉनिक बिल बोर्ड, जिसके ऊपर के जो है ना वो एक्ट्रेसों की तस्वीरें लगी होती हैं या उनकी मूवी लगी हुई होती है, ठीक है। अब आप अपने घर से निकल रहे हैं इस इरादे से कि आप जा करके उस बिल बोर्ड के ऊपर तस्वीरें देखें, वो मूवी देखें जिसके अंदर जो दुनिया की खूबसूरत तरीन अदाकाराओं की फिल्में चल रही हैं, ठीक है, थीके? तो ये क्या होता है, इसको कहते हैं इल्म और इरादे के साथ गुनाह करना। और इसी का दूसरा रुख क्या हो सकता है कि आपको पता ही नहीं था, आप गाड़ी चला करके उस जगह से गुजर रहे हैं जहां पर कि ये इलेक्ट्रॉनिक बिलबोर्ड लगा हुआ है, ठीक है। अब यहां पर जब आप पहुंचे ना, वहां पर जब आप ट्रैफिक सिग्नल के ऊपर रुके, तो आपने देखा कि ये तो ये क्या तमाशे चल रहे हैं बिलबोर्ड के ऊपर, और आपने जब उसको देखा ना तो आप उसको देखते ही रह गए, ठीक है, देखते ही रह गए, यानी आपकी निगाहें उसके ऊपर जम गई, आप हटा नहीं सके अपनी निगाहें, ठीक है। तो ये क्या किया आपने, ये आपने गुनाह कर दिया, बदनजरी का गुनाह किया, लेकिन आप इरादे के साथ तो नहीं आए थे ना यहां पर ये गुनाह करने के लिए। तो जब आपके सामने ये गुनाह पेश हुआ तो आप अपने बशरी तकाजों के तहत, यानी जो ह्यूमन वीकनेसेस होती हैं इंसान के अंदर, उसके वजह से आप अपने आप को बचा नहीं सके इस गुनाह के करने से, ठीक है, तो आप इसमें मुबतला हो गए, लेकिन इरादे के साथ तो नहीं निकले थे ना। तो जो शख्स कल्बी जिक्र का हामिल हो जाता है वो इल्म और इरादे से गुनाह से बच जाता है, ठीक है, लेकिन उसके अंदर इतनी स्ट्रेंथ नहीं आती है कि अगर गुनाह उसके सामने पेश किया जाए तो भी अपने आप को रोक ले, ऐसा नहीं होता, ठीक है। लेकिन जब वो इस कल्बी जिक्र के ऊपर मेहनत करता है, मेहनत करने का मतलब ये होता है कि इसके जो मजीद तकाजे होते हैं ना उनको भी फुलफिल करता है और अपने तज़किए नफ्स की मेहनत करता है, ठीक है, तज़किया नफ्स की मेहनत की तफसील तो खैर अभी बहुत ही, फिर हम टेंजेंट पे चले जाएंगे, ठीक है, लेकिन इन शॉर्ट ये कि तज़किया नफ्स की मेहनत करता है तो उसके जो ये स्टेट है ना, जो लेवल है, ये लेवल इंक्रीज होता है, ये इसी लेवल पे हमेशा नहीं खड़ा रहता कि इल्म और इरादे से गुनाह तो नहीं कर रहा है, लेकिन जैसे ही गुनाह सामने पेश हुआ वो कर बैठा, उसके अंदर वो उसके अंदर इन्वॉल्व हो गया, ये पहला लेवल है, वो हमेशा इस पहले लेवल पर नहीं रहता, बल्कि मेहनत करने के साथ वो दूसरे लेवल पर पहुंचता है। दूसरा लेवल क्या होता है कि उसके दिल के अंदर गुनाह करने का इरादा तो आता है, ठीक है, लेकिन वो अपने आप को उस गुनाह से रोक लेता है। मिसाल के तौर पर यही मिसाल लेके चलते हैं कि वो उस ट्रैफिक सिग्नल के ऊपर रुका और उसकी निगाह जो है वो वहां पर पड़ी, ठीक है, उस बिलबोर्ड के ऊपर पड़ी, लेकिन उसने जो है ना उससे अपनी निगाह को हटा लिया, ठीक है, अल्लाह ताला से गाफिल नहीं था ना, अल्लाह ताला के जिक्र में था, वो उससे हटाने के काबिल हो गया, लेकिन एक ख्याल मुस्तकिल उसको तंग कर रहा है कि यार देख लो कौन तुम्हें देख रहा है यहां पे बदनजरी करते हुए, ना तो तुम्हारी बीवी बराबर में बैठी हुई है जो तुम्हें यू नो राइट एक हाथ लगाएगी कि क्या कर रहे हैं आप, राइट, ना तुम्हारे बच्चे पीछे से देख रहे हैं, ना कोई और जो है वो तुम्हारा जानने वाला साथ की गाड़ियों के अंदर बैठा हुआ है कि जी ये मौलवी साहब इतनी लंबी दाढ़ी के साथ क्या हरकत कर रहे हैं, राइट, कोई भी नहीं है यहां पे देखने वाला, तो तुम देख लो उसको, तकाजा आ रहा है दिल के अंदर, ठीक है, लेकिन चूंकि इसके दिल के अंदर अल्लाह का जिक्र है ना, तो इस वजह से अल्लाह से ये गाफिल नहीं है, तो ये इस तकाजे से अपने आप को बचा रहा है, बचा रहा है, फाइट कर रहा है उस तकाजे से, ठीक है, और ये नहीं देखता वहां पर, ठीक है। ये जो दर्जा है ना, ये दूसरा दर्जा है जिक्र कल्बी का, और इस दर्जे को बाकायदा कहा जाता है विलायत सुगरा का दर्जा, छोटी विलायत का दर्जा है ये, यानी अल्लाह ताला की दोस्ती का दर्जा है लेकिन सुगरा, ठीक है, छोटा दर्जा, ओके। तो ये विलायत सुगरा का दर्जा कहलाता है कि गुनाह का तकाजा हो रहा है लेकिन उस तकाजे से ये फाइट कर रहा है और अच्छी खासी सक्सेसफुल फाइट कर रहा है, ठीक है। जब मजीद मेहनत करता है, तज़किया नफ्स की मेहनत मजीद करता है और बाकायदा एक्टिवली जो है वो अल्लाह ताला का जिक्र भी करता है, नेकों की सोहबत भी इख्तियार करता है, बुरों की सोहबत से बचता है, ठीक है, अपने आप को बचाता है, तो फिर उसको तीसरा दर्जा नसीब होता है कल्बी जिक्र का, ठीक है। और वो कल्बी जिक्र का तीसरा दर्जा क्या होता है, कोई बता सकता है कल्बी जिक्र का तीसरा दर्जा? दो दर्जे तो आपको बता दिए, तीसरा दर्जा आप जरा आप मदद करें। नहीं, वकूफ कल्बी तो पहला दर्जा होता है, यही तो मजे की बात है, हमारे मशायख जो मामूलात बताते हैं ना, जैसे ही कोई शख्स जो है वो सिलसिले में इस्लाही ताल्लुक जोड़ता है तो उसको जो मामूलात बताते हैं उन मामूलात में से एक है वकूफ कल्बी। ये जो वकूफ कल्बी है ना, ये तो इंसान को पहला दर्जा अता फरमा देता है कि वो इल्म और इरादे से गुनाह करना छोड़ देता है। जो भी वकूफ कल्बी का मामूल करता है वो पहला दर्जा हासिल कर लेता है जिक्र कल्बी का। विलायत कुबरा, ठीक है, जाहिर है सुगरा के बाद जो अगला दर्जा होगा वो तो कुबरा ही होगा, लेकिन विलायत कुबरा में उसकी कैफियत क्या होती है ये पूछा था असल में मैं, ठीक है, सुगरा के बाद कुबरा तो ठीक है, ये आपने सही जवाब दिया, लेकिन कैफियत क्या होती है? मईयत की कैफियत होती है, लेकिन ये मईयत भी जो है ना ये भी सही जवाब नहीं है, इसलिए कि मईयत की कैफियत उसको पहले दर्जे से भी मिलनी शुरू हो जाती है। अलबत्ते मईयत कुबरा आप कह सकते थे इसको, ठीक है, विलायत कुबरा के अंदर उसको मईयत कुबरा वाली कैफियत हासिल हो जाती है, ठीक है, पहले जो है वो मईयत कुबरा नहीं थी, मईयत सुगरा थी, और सुगरा से पहले जो है वो भी मईयत थी लेकिन एक कम दर्जे की मईयत थी। गुनाह की तरफ मायल नहीं होता, नहीं ये मायल नहीं होता, ये तो दूसरे दर्जे में भी हो रहा है क्योंकि तकाजा तो आ रहा है लेकिन मायल नहीं हो रहा, तो ये तो आपने दूसरे दर्जे की एक की कैफियत बता दी, तीसरे दर्जे की कैफियत पूछ रहा हूं। नफ्से मुतमइन्ना हासिल हो जाता है, जवाब तो आपका ये ठीक है लेकिन ये वैसे ही जवाब है जैसे कि शबीर साहब ने जवाब दिया कि उसका आपने नाम बता दिया, हमें टर्म बता दी उसके लिए, ठीक है, तो उसकी कैफियत की एक्सप्लेनेशन बताया ना, गुनाह से नफरत, जी माशाल्लाह, ठीक है, ये होता है, गुनाह का दिल ही नहीं चाहता, ठीक है, यानी तकाजा ही नहीं होता गुनाह का बल्कि गुनाह से नफरत पैदा हो जाती है उसके अंदर, ठीक है। जैसे कि आपके सामने अगर कोई बिलबोर्ड होता, उस बिलबोर्ड के ऊपर सड़ी हुई चीजें होती, हाँ, जो बाथरूम के अंदर होती है ना, पेशाब और पखाना, उसकी तस्वीरें बनी हुई होती हैं उस बिलबोर्ड के ऊपर, तो क्या आपका दिल तकाजा करता कि यार देखूं जरा कैसा है, क्या तकादा करता? नहीं तकादा करता ना, अगर आप सलीमुल फितरत इंसान है, ठीक है, अगर कोई नजासत को पसंद करने वाले इंसान है तो फिर तो तकादा करता, ठीक है, यानी इंसान की तबीयत ही जो है वो यानी वहशी किस्म की हो जाए या वहशियों से भी बदतर उसकी तरबियत हो तबीयत बन जाए तो फिर तो पखाने को देखना कभी दिल करेगा ना उसका। आजकल दुनिया में ऐसे लोग भी मौजूद हैं, ठीक है, लेकिन एक सलीमुल फितरत इंसान जो होता है वो कभी भी पखाने को देखना पसंद नहीं करता, सड़ी हुई गली हुई सड़ी हुई चीजों को देखना पसंद नहीं करता, वो उनसे नफरत करता है, वो निगाह फेर लेता है, उसके दिल के अंदर शदीद कराहियत वाली कैफियत आती है, ठीक है ना। जैसे औरतों के सामने अगर आप कोई इस किस्म की बात कर दें तो कहती हैं हमें मतली हो जाएगी, हमें उल्टी हो जाएगी, ना करो ऐसी कोई बात हमारे सामने, क्यों? दिल के अंदर नफरत है ना इन चीजों के बारे में, ठीक है। तो कोई दिल तकाजा कोई थोड़ी कर रहा होता है कि देखो देखो बातें सुनो बातें सुनो, नहीं ना। ये कैफियत एक मोमिन की होती है जिसको के विलायत कुबरा का दर्जा मिल जाता है, या इन अदर वर्ड्स नफ्स मुतमइन्ना उसको नसीब हो जाता है, ठीक है, या इन अदर वर्ड्स वो जिक्र कल्बी के इंतहाई दर्जे में पहुंच जाता है, ठीक है। अब उसके दिल में गुनाह का तकाजा ही नहीं होता, ठीक है, वो गुनाह से नफरत करता है। इसको इन अदर वर्ड्स कहते हैं कि मकरूहात शरईया मकरूहात तबईया बन जाती हैं, ठीक है। मकरूहात शरईया समझ ही गए होंगे कि जो जो चीजें शरीयत में मकरूह हैं वो उसकी तबीयत में भी मकरूह हो जाती हैं, वो नफरत करने लगता है गुनाह से, ठीक है। जैसे कोई सिगरेट के धुएं से नफरत करता है, जो सिगरेट नहीं पीता उसको सिगरेट के धुएं से नफरत होती है, ही कैन नॉट स्टैंड एनी वन स्मोकिंग इन द रूम, वो या तो खुद रूम से निकल जाएगा या उस बंदे से कहेगा कि आप इस रूम से निकल जाएं, मैं आपके साथ नहीं रह सकता इस कमरे के अंदर, ठीक है ना। ये स्टेट्स जो हैं क्या ये स्टेट्स रिवर्स में भी जा सकती हैं वंस यू अचीव हायर स्टेट? नहीं, ठीक है। विलायत कुबरा का जब दर्जा जब किसी को मिल जाता है ना तो वो रिवर्स में नहीं जा सकता, ठीक है, इट्स नॉट पॉसिबल, सही है। विलायत सुगरा के बाद भी वापस जाना मुमकिन है, ठीक है, क्योंकि अभी भी ना निस्बत कच्ची है, ठीक है, अच्छी खासी उसके अंदर स्ट्रेंथ आ गई है लेकिन अभी भी अल्टीमेट स्ट्रेंथ नहीं आई है उसके अंदर, अभी भी जो है ना उसको तोड़ा जा सकता है इस धागे को, लेकिन विलायत कुबरा के धागे को नहीं तोड़ा जा सकता, क्योंकि विलायत कुबरा का जो ताल्लुक होता है ना इसके बारे में अल्लाह ने फरमाया है कि इन्ना इबादी लैसा लका अलैहिम सुल्तान, ये मेरे ऐसे बंदे होते हैं कि जिनके ऊपर शैतान का जोर नहीं चल सकता, ठीक है। और वो क्यों नहीं चल सकता? क्योंकि अब ये बंदे जो है ना अल्लाह की हिफाजत में आ जाते हैं, ठीक है, इनको अल्लाह ताला महफूज रखता है शैतान के गलबे से, ठीक है। तो खैर हमारा ये गोल नहीं होना चाहिए कि हम विलायत कुबरा के बंदे तलाश करते फिरें और उनके बारे में जजमेंट करें कि ये पीर साहब जो है विलायत कुबरा पर हैं, वो शेख साहब जो है वो विलायत कुबरा पर हैं, ये फलाने शेख साहब विलायत सुगरा पर हैं, फलाने शेख साहब जो है वो तो अभी पहले ही दर्जे पर हैं, ये हमारा गोल नहीं है जिंदगी का, ठीक है। हमने तो अपनी इसलाह के लिए एक शेख तलाश करना है, ठीक है, जो कि हमारी मदद करे इस रास्ते के ऊपर, लेकिन हमारी जिंदगी का गोल ये है कि हम खुद इस लेवल के ऊपर पहुंचे, ठीक है। और इस खुद लेवल पे इस पहुंचने के लिए जो है ना फिर हमें ये जजमेंटेशंस भी नहीं करनी होती, हम बस मेहनत में लगे रहते हैं सारी जिंदगी, ठीक है। जब इस दर्जे पे पहुंच जाते हैं ना तो फिर हमें पता भी लग जाता है कि हम इस दर्जे पे पहुंच तो गए हैं, लेकिन इस दर्जे पे पहुंचने की एक निशानी सबसे बड़ी क्या होती है आप ही बताएं, ठीक है। जो बयान सुनते हैं कम अज कम मजालिस में आते हैं उनको तो इसका जवाब मालूम होना चाहिए। जी हर वक्त डरते रहते हैं, अगरचे के वो हिफाजत के लेवल पर आ जाते हैं लेकिन वो जितना डरते हैं ना उतना कोई और नहीं डरता, ठीक है। दूसरे लोग तो कम डरते हैं या उससे भी कम दर्जे के लोग होते हैं, वो तो बिल्कुल ही नहीं डरते, नेकी करते हैं और बिल्कुल भी नहीं डरते, ठीक है, बेखौफ रहते हैं, नेकी कर करके बेखौफ रहते हैं कि बस हम तो कर रहे हैं ना नेकी, हम तो बस पहुंच गए, ठीक है, हम तो ऊंचे हो गए, राइट। लेकिन ये जो होते हैं ना विलायत कुबरा वाले, ये तो सबसे ज्यादा डरते रहते हैं। अच्छा ये डरते क्यों हैं? ये तो दोस्ती का लेवल अचीव कर चुके होते हैं, बहुत ऊंची लेवल की दोस्ती का दर्जा अचीव कर चुके होते हैं, तो ये क्यों इतना डरते हैं? क्या दोस्त दोस्त से डरता है? दोस्त को दोस्त से डर तो नहीं लगना चाहिए, ठीक है, ये तो विलायत कुबरा के दर्जे पहुंच चुके हैं ना, तो दोस्त को दोस्त से डर तो नहीं लगना चाहिए। ठुकरा जाने से, हाँ ठुकराए जाने से, राइट, ठीक है, एक और जरा इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करें, अल्लाह की नाराजगी से डरते हैं, हाँ लेकिन क्यों भाई? मतलब इतना गहरा दोस्त होने के बाद फिर दोस्त की नाराजगी से क्यों डरते हैं? शैतान से गाफिल नहीं रहने के, अल्लाह की खात्मे का डर होता है, हाँ ये सारे डर तो इनको होते हैं। इसकी वजह ये होती है कि ये जो दोस्ती है ना, ठीक है, विलायत कुबरा वाली जो दोस्ती है ना, ये दुनियावी दोस्ती की तरह नहीं होती, ठीक है। दुनियावी दोस्ती के अंदर जो दो दोस्त होते हैं ना, ये दोनों एक लेवल के दोस्त होते हैं, ठीक है, पीयर्स होते हैं, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा उम्र का थोड़ा फर्क होगा, ठीक है, लेकिन ये एक ही लेवल के तकरीबन लोग होते हैं ना, आप किसी के साथ दोस्ती लगाते हैं तो आप अपने हम उम्र के साथ लगाते हैं, क्लास फेलो के साथ लगाते हैं, या अपने किसी ऐसे कजन के साथ दोस्ती लगाते हैं जो आपकी उम्र का होता है, ठीक है। तो ऐसी दोस्ती के अंदर डर कैसा भाई, वो भी उसी लेवल पर है, आप भी उसी लेवल पर है, लेकिन अल्लाह के साथ जो दोस्ती होती है ये एक लेवल की दोस्ती तो नहीं होती है ना, ठीक है। बेशक दोस्ती मजबूत तो है, लेकिन अल्लाह ताला का जो मुकाम है उस मुकाम के मुकाबले में आपका मुकाम तो कुछ भी नहीं है ना। इसकी मिसाल तो ऐसे ही है, हाँ, जैसे आपने फरमाया कि अल्लाह ताला तो बहुत बड़े हैं ना, अल्लाह की मार्फत हासिल हो जाती है तो अल्लाह ताला की बड़ाई भी तो सामने आ जाती है, ठीक है। महबूब को नाराज नहीं करना चाहते, हाँ, लेकिन महबूब का दर्जा जो है ये तो ऐसे ही है ना, जैसे आप जो है वो एक मामूली से कोई मुलाजिम हो और आपको बादशाह सलामत अपनी दोस्ती के लिए कबूल कर लें, ठीक है। बादशाह सलामत है, पूरा मुल्क उनके कब्जे में, एक ऑर्डर देते हैं और जो है वो कुछ भी हो सकता है मुल्क के अंदर, ठीक है, यानी वर्चुअली स्पीकिंग कुछ भी हो सकता है, राइट। तो एक भंगी जो है उसको, जो अपने आप को भंगी समझता भी हो, राइट, उसको अगर बादशाह सलामत अपनी खसूसी दोस्ती में ले लें तो क्या अब ये बेफिक्रा हो सकता है? ये तो कभी बेफिक्रा नहीं हो सकता ना, क्योंकि इसको हर वक्त इस बात का डर रहेगा कि भाई मैं चाहे दोस्ती यानी नसीब तो मुझे हो गई है, लेकिन बादशाह सलामत के बराबर तो मैं कभी भी नहीं हो सकता ना, तो बादशाह सलामत मुझे कभी भी रद्द कर सकते हैं, कभी मुझसे कोई गलती हो गई, कोई मैंने नागवारी का बंदोबस्त यानी कोई सबब बना दिया बादशाह सलामत की, तो ये दोस्ती सारी की सारी खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो यही मामला जो होता है ना विलायत कुबरा वाले दोस्तों का होता है कि वो इस वजह से डरते रहते हैं कि कहीं उनसे कोई गलती हो गई, कोई अल्लाह की शान के खिलाफ कोई बात कर दी या शान से कम दर्जे की कोई बात कर दी, अल्लाह ताला को नाराज नाराज कर दिया, ठीक है। तो उनको तो हर वक्त ये बात याद रहती है ना, अल्लाहु समद, ठीक है, अल्लाह ताला की बेनियाजी कि भाई हमें अल्लाह की जरूरत है, अल्लाह को तो हमारी जरूरत नहीं है ना, राइट। तो अल्लाह को तो, अल्लाह ताला के तो दोस्ती लगाने वाले करोड़ों बंदे इस दुनिया में गुजरे हैं, आगे भी आएंगे, जरूर आएंगे, ठीक है। तो हमें, हमारी क्या हैसियत है, तो इस वजह से डरते रहते हैं, ठीक है। तो ये जिक्र कल्बी के बारे में चंद बातें आपके सामने करनी थी कि ये तीन दर्जे होते हैं, कम से कम दर्जा ये होता है कि इल्म और इरादे से गुनाह करना इंसान छोड़ देता है, और इसी को वकूफ कल्बी का सबसे कम या मिनिमम दर्जा कहते हैं। फिर उसके बाद जो है वो दूसरा, कि गुनाह का मौका आता है और गुनाह का तकाजा भी दिल में पैदा होता है, लेकिन वो अपने आप को रोकता है, जंग लड़ लड़ करके अपने आप को रोक लेता है, ठीक है। इसको विलायत सुगरा का दर्जा कहते हैं, छोटी विलायत। और तीसरा दर्जा ये होता है कि विलायत कुबरा यानी मकरूहात शरईया मकरूहात तबईया बन जाती हैं, अब ये गुनाह से खुद नफरत करना शुरू हो जाता है, ठीक है जी। कोई सवाल इस हदीस या इस कॉन्सेप्ट के बारे में? इसके बाद अगली हदीस है, छोटी सी इसकी इबारत है, नीचे से हम पढ़ लेते हैं कि अन अबी हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु काला قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل العلم لا ينتفع به كمثل كنز لا ينفق منه في سبيل الله। यही वकूफ है, यानी यही वकूफ कल्बी है जी, यही वकूफ कल्बी के तीन दर्जे समझ लें, सबसे कम दर्जा, फिर उससे ज्यादा बेहतर दर्जा, दर्जा और उससे ज्यादा बेहतर दर्जा, ठीक है। और वकूफ कल्बी का मतलब क्या होता है कि अपने कल्ब को ठहराना अल्लाह ताला के जिक्र के ऊपर, कि हर वक्त अल्लाह ताला की तरफ ध्यान रहे, कभी भी गाफिल ना हो अल्लाह ताला से, ठीक है जी। तो ये जो हदीस हमने पढ़ी इसका तर्जुमा किताब ही से पढ़ते हैं कि मसलुल इल्मी के मिसाल इल्म की ला युनतफाउ बिही कि जिससे नफा ना उठाया जाए, युनतफाउ नफा इंतफा यंतफ्यू उनतफिया युनतफाउ, हाँ ये मजहूल का सीगा है, पैसिव टेंस है ये, ठीक है। ला युनतफाउ बिही, ठीक है, ये पैसिव टेंस जो है ना ये बहुत अहम है यहां पर, ठीक है। इस हदीस को समझने में इस पैसिव टेंस का याद रखना बहुत अहम है, ये एक्टिव टेंस नहीं है, ये पैसिव टेंस है, ठीक है, मजहूल का सीगा है। ला युनतफाउ बिही का मसले कंजन, गोया के कमसा का कहते हैं तशबी के लिए, काफ तशबी का है, मसले कंजन, कंज कहते हैं खजाने को, तो खजाने की मिसल है, ठीक है, لا ينفعو، اس خزانے کی مانند ہے، لا ينفقو منہو، جس میں سے اللہ کی، جس میں سے خرچ نہ کیا جائے، ينفقو منہو فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں. ٹھیک ہے، تو تھوڑا توڑ توڑ کر کے ترجمہ کر دیا، لغات تو اس کے بعد ہم نے کرنی ہے. ٹھیک ہے، تو مثلو جو ہے وہ ویسے ہی لفظ ہے جو کہ پیچھے پچھلی والی حدیث میں بھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں، اس میں بھی تھا مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ. ٹھیک ہے، تو اس لفظ کو بھی بتایا تھا کہ یہ مضاف ہی بنتا ہے، اور اس کے بعد جو لفظ آتا ہے نا وہ اس کا مضاف الیہ ہی بنتا ہے. ٹھیک ہے، تو مثل العلمی، العلم جو ہے وہ اس کا مضاف الیہ بن گیا. ٹھیک ہے، جیسے کلو کا لفظ بھی ایسے ہی بتایا تھا آپ کو، کلو کے بعد بھی جو اسم آتا ہے نا وہ اس کا مضاف الیہ ہی بنتا ہے. ٹھیک ہے، وہ بھی کچھ دو حدیثوں پہلے کلو کا لفظ ہم نے ڈسکس کیا تھا. ٹھیک ہے، تو علم کی مثال لا ينتفع به، لا جو ہے وہ تو نافیہ ہے، ٹھیک ہے، نفی کے لیے، نگیشن کے لیے. ٹھیک ہے، اچھا اس کے بعد ينتفع جو لفظ ہے، ٹھیک ہے، پہلی بات تو یہ فعل ہے، اسم اور حرف نہیں ہے. پھر فعل کے اندر سے یہ فعل مضارع ہے. کیسے پتا فعل مضارع ہے؟ کیونکہ یہ جو شروع ہو رہا ہے وہ یا سے شروع ہو رہا ہے، اور یا جو ہوتی ہے نا وہ مضارع کی علامتوں میں سے ایک علامت ہوتی ہے، علامات مضارع. ٹھیک ہے، یا، تا، حمزہ اور نون، یہ چار علامات مضارع ہوتے ہیں. تو یہ یا سے شروع ہو رہا ہے، اور اس کے جو حروف اصلی ہیں نا وہ یا ان میں شامل نہیں ہے. ٹھیک ہے، یا ان میں شامل نہیں ہے. اگر شامل ہوتا تو پھر تو یہ فعل مضارع نہ ہوتا، کیونکہ پھر وہ اس کا ایکچوئل لیٹر ہوتا، لیکن چونکہ یہ ایکچوئل لیٹر نہیں ہے تو پھر یا کیا ہے؟ علامت مضارع ہے. تو یہ ہو گیا کہ یہ فعل مضارع ہے. اب باقی صیغہ اس کا کیا ہے؟ تو ينتفع جو ہے وہ واحد مذکر غائب، واحد مذکر غائب فعل مضارع مجہول. ٹھیک ہے، صیغہ اس کا بالکل پہلا والا ہی صیغہ ہے، واحد مذکر غائب. ٹھیک ہے، لیکن فعل مضارع اور مجہول، معروف نہیں. ٹھیک ہے، ایک تو یہ صیغہ آپ کو بتا دیا. ٹھیک ہے، یہ سب نے لکھ لیا، کسی کو اس میں سوال تو نہیں ہے کہ یہ پہلا صیغہ کیسے ہے؟ یہ بالکل اسی وزن پر ہے، یعبدو جو آپ کو بتایا تھا نا، عبدا یعبدو. ٹھیک ہے، یعبدو کا مطلب اس نے عبادت کی، نہیں وہ عبادت کرتا ہے یا وہ عبادت کرے گا. تو یعبدو کا اگر آپ مجہول بنائے نا تو وہ بنے گا یعبدو. ٹھیک ہے، مجہول کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ جو فرسٹ لیٹر ہوتا ہے نا علامت مضارع والا لیٹر، اس کے اوپر پیش ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یعبدو اس کی عبادت کی جاتی ہے یا اس کی عبادت کی جائے گی، یہ ہوتا ہے یعبدو. ٹھیک ہے، تو یعبدو ہی کی طرح یہ ہے ينتفع. ٹھیک ہے، اچھا اب آپ کے ذہن میں یہ سوال آنا چاہیے کہ بھئی یعبدو جو ہے وہ تو بہت سمپل سا پیٹرن تھا، عین با دال کے پہلے جو ہے وہ یا لگا دیا، یا کے اوپر پیش لگا دیا تو وہ یعبدو ہو گیا. ٹھیک ہے، یہاں پر تو ينتفع ہے، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نفع سے، یعنی اس کا ترجمے سے پتہ لگ رہا ہے کہ نفع کا اس سے کوئی تعلق ہے، تو اصل لیٹرز تو اس کے نون، فا اور عین ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کے اندر یہ تا کہاں سے آ گیا بیچ میں؟ تا جو ہے وہ اس کا حرف اصلی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اب میں آپ کو تھوڑی سی ایکسٹرا صرف کی نالج بھی دے رہا ہوں ساتھ ساتھ، رائٹ، پہلے بھی دی تھی آپ کو، ہم اب تک جو ہے وہ صرف کے اچھی خاصی ایک ڈیٹیلڈ نالج دے چکے ہیں. وہ کیا تھی کہ تھری لیٹر جو ورڈز ہوتے ہیں نا ان کے چھ ابواب میں آپ کو پڑھا چکا ہوں. ٹھیک ہے، وہ آپ کو واٹس ایپ کے اوپر دو پیجز بھی بھیج دیتے ہیں کتاب کے، ان کے اندر تھری لیٹر ورڈز جن کو ثلاثی مجرد کہتے ہیں ان کے چھ ابواب تھے. کون کون سے تھے وہ؟ نصر ینصرو، غرب یدربو، سمع یسمعو، فتح یفتحو، کرم یکرمو اور حسب یحسبو. یہ چھ ابواب ہوتے ہیں، چھ پیٹرنز ہوتے ہیں تھری لیٹر ورڈز کے. ٹھیک ہے، اب جو بات ہو رہی ہے نا یہ بات ہو رہی ہے تھری پلس ایکسٹرا. ٹھیک ہے، تھری پلس ایکسٹرا، یہ بھی ایک کیٹیگری ہوتی ہے ورڈز کی، اس کو کہتے ہیں ثلاثی مزید فیہی. ٹھیک ہے، ثلاثی مزید فیہی، یعنی ثلاثی تو یہ ہیں، تھری لیٹرڈ ہیں، لیکن ان کے اندر کچھ مزید بھی ہیں. فیہی کا مطلب اس کے اندر، اور مزید کا مطلب ایکسٹرا. ٹھیک ہے، تو ثلاثی تو یہ ہیں لیکن ثلاثی کے ساتھ کچھ ایڈیشنل بھی ہیں اس کے اندر. تو یہ کیا ہے؟ اس کے اندر सुलासी है ये असल में, ठीक है। सुलासी कैसे है, क्योंकि इसके ओरिजिनल लेटर्स क्या है, हुरूफ असली जिनको कहते हैं, नून फा आइन, नफा, ठीक है। उर्दू में भी हम नफा का लफ्ज जानते हैं। तो इसमें एडिशनल लेटर्स क्या है, एडिशनल लेटर्स इसके अंदर सिर्फ एक है, ता, ठीक है। या जो है वो एडिशनल लेटर नहीं है, क्योंकि वो मुजारे की वजह से आया हुआ है, ठीक है। तो ये जो कहलाते हैं ना कैटेगरी, इसको कहते हैं सुलासी मजीद फी ही। सुलासी मजीद फी ही के बहुत सारे बाब, तकरीबन 15 बाब होते हैं, 15, ठीक है। सुलासी मुजर्रद के 6 बाब आपको पढ़ा दिए, ठीक है। अगर आपको दिलचस्पी है, आप मिस कर चुके हैं या आपको याद नहीं है, तो उसकी रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने आसानी फरमाई है, रिकॉर्डिंग मौजूद है, राइट। तो यहां पर जो बात हो रही है सुलासी मजीद फी ही का एक बाब जिसको कहते हैं, एक मिनट, इंतफा यंतफियू, हाँ, इंतसरा यंतसिरु, ये इस बाब को कहा जाता है, इंतसरा यंतसिरु, ठीक है। और ये अगर फा आला के वजन पे पढ़ा जाए तो उसको कहेंगे इन फा आला यन फा इलु, इन फा आला यन फा इलु, इन फे आलन। अच्छा, इसका मसदर भी आपको बता दें, इन फे आलन, ठीक है। ये कहलाता है बाब इनफ़ाल, या सिर्फ इन, या इनफ़ालन बोले या इनफ़ाल बोले, तो इस बाब का बाकायदा नाम होता है बाब इनफ़ाल, ठीक है। क्योंकि ये इसका माजी होता है इनफ़ाला और मुजारे होता है यनफ़ालु, ठीक है। इसकी एक मशहूर मिसाल जो है वो इंतसरा यंतसिरु किताबों में लिखी हुई है, ठीक है। यहां पर ये जो लफ्ज है ना यंतफियो, ये क्या है, ये है इसी बाब से इंतफा आ यंतफे उ, इंतफा अन, फ हुआ मुंतफे उन, ठीक है। ये इसकी सर्फ सगीर का पहला लाइन बनता है, बनती है, ठीक है, एक्टिव टेंस की पहली लाइन, ठीक है। जैसे नसरा यंसुरु, नसरन फहुवा नासिरुन, ये पहली लाइन थी ना जो हमने आपको बताई थी कि एक्टिव टेंस की होती है, ठीक है। माजी भी एक्टिव, मुजारे भी एक्टिव, फिर तीसरा वर्ड जो होता है वो इसका मस्दर होता है, और उसके बाद फहुआ कह करके इसम फाइल बताते हैं, ठीक है। तो ये भी पहली लाइन इसी तरीके से, इंतफा उसने नफा उठाया, यंतफियु वो नफा उठाता है या वो नफा उठाएगा, इंतफान, ठीक है, नफा उठाना। अच्छा एक मिनट, ये नफा उठाना की बजाय ना नफा पहुंचाना होगा, नफा पहुंचाना गालबन होगा, ये मुझे देखना पड़ेगा, याद अभी एग्जैक्टली नहीं आ रहा। तो नफा उठाना या नफा पहुंचाना, ठीक है। फहुआ मुंतफिउन, मुंतफिउन किसको कहते हैं, जो कि नफा पहुंचाने वाला होता है। अगर हम पहुंचाने से ट्रांसलेट करें ना, विच इज मोस्ट लाइकली पहुंचाना ही होता है, तो मुंतफिउन का मतलब क्या होता है, नफा पहुंचाने वाला, ठीक है। मुंतफिउन जैसे उर्दू में भी कहते हैं ना, ये बड़ा मुंतफि है, ठीक है, नफा पहुंचाने वाला, तो ये इसका इसम फाइल हो गया, ठीक है। तो इसी को जब आप मजहूल में डालते हैं ना, तो वो बनता है उन्तुफिया युन्तफाउ, युन्तफाउ, ठीक है। तो युन्तफाउ का तर्जुमा क्या हुआ, जैसे कि हदीस के तर्जुमे में लिखा हुआ है कि उसको नफा, यानी उससे नफा उठाया जाता है या उससे नफा उठाया जाएगा, ठीक है। युन्तफाउ का मतलब उससे नफा उठाया जाता है या उससे नफा उठाया जाएगा, ठीक है। तो इस तर्जुमे से ये मालूम हुआ कि अगर मजहूल में ये तर्जुमा है विच इज कन्फर्म्ड, तो मारूफ में भी फिर उठाने का ही तर्जुमा होगा, पहुंचाने का तर्जुमा नहीं होगा। हाँ, तो इंतफान का मतलब होगा नफा उठाना, यंतफाउ का मतलब होता है यंतफाउ, यानी मारूफ में इसका तर्जुमा होगा कि वो नफा उठाता है या वो नफा उठाएगा, ये हो गया यंतफाउ, एक्टिव का तर्जुमा। और पैसिव का तर्जुमा जैसे कि हदीस में लिखा हुआ है, कि उससे नफा उठाया जाता है या उससे नफा उठाया जाएगा। ये पैसिव का तर्जुमा हो गया। ठीक है, तो ला युनतफाउ कि उससे नफा नहीं उठाया जाता, क्योंकि ला नफी वाला लग गया ना, नेगेट हो गया। ठीक है, अच्छा तो ये सारी तफसीर हो गई, आपको बाब भी बता दिया। अच्छा, इसका आपको मैंने टेंस भी बता दिया सीगा, और साथ में आपको इसका बाब भी बता दिया कि ये है बाब इनफ़ाल। ठीक है, बाब इनफ़ाल जो ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है, और इसका सीगा बता दिया और तर्जुमा हो गया पूरा। ठीक है, कोई सवाल है इस एक लफ्ज़ के बारे में? बाकी इसकी हिकमत जो है वो तशरीह के अंदर आएगी कि ये बाब, ये मजहूल टेंस से क्या अहमियत सामने आती है, क्या बात सामने आती है। अच्छा, युनतफ़ाउ बिही कमसले कंजन। ठीक है, काफ जो है ये काफ तशबीह कहलाता है। ठीक है, किसी चीज को किसी चीज के साथ तशबीह करने के लिए, मुशाबहत बताने के लिए। जैसे एक लड़का है, उसका नाम है आरिफ। ठीक है, और आप कहना चाहते हैं कि ये आरिफ जो है ना बड़ा बहादुर है, ये तो शेर के जैसा है, तो आप कहेंगे आरिफु कल असदी। ठीक है, असद के जैसा है, असद शेर को कहते हैं। ठीक है, तो काफ़ी मुशाबहत के लिए होता है और ये हरफ जर होता है। ठीक है, इसी वजह से मसल का जो लफ्ज़ है ना वो हालत जर में चला गया। ठीक है, कमसली हो गया। और कमसलिन क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये मुजाफ बना कंस का, और मुजाफ जो होता है उसके ऊपर तनवीन नहीं आ सकती, इस वजह से सिर्फ एक जेर है, कमसली कंजिन। ठीक है, कंज का लफ्ज़ जो है वो खजाने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, ट्रेजर, और यहाँ पर वो मुजाफ इलैह ही बन रहा है मसल का, तो इस वजह से वो हालत जर में चला गया, मसले कंजिन। ठीक है, तो लफ्ज है मसल, ठीक है, इसम होता है। ठीक है, तो यहां पर ये हालत जर में है, इस वजह से मसली है, जबकि इस हदीस के शुरू में ये हालत रफा में था, क्योंकि डिफॉल्ट हालत जो होती है वो रफा की होती है, उसके ऊपर कोई आमिल नहीं है ना जो उसको हालत नसब में या हालत जर में डाले, इस वजह से वो हालत रफा में ही होगा, तो इस वजह से वो मसलू था। ठीक है, हालत रफा पेश से रिप्रेजेंट होती है। ठीक है, अच्छा इसके बाद है ला युनफकू मिनहू। तो ला जो है ये फिर अगेन लाए नफी है, ठीक है, निगेशन वाला, और ये हर्फ है। ठीक है, हर्फ नफी इसको कहते हैं, युनफकू मिनहू। अब ये युनफकू जो है ये आप बताएं कि इसका क्या टेंस होगा? बाब मैं आपसे नहीं पूछता इसलिए कि मैंने आपको इसका बाब पढ़ाया नहीं है। ठीक है, बाब इनफ़ाल ये है नहीं, तो ये बाब मैंने आपको पढ़ाया नहीं, लेकिन टेंस तो आप बता सकते हैं इसका। युनफकू का टेंस क्या होना चाहिए, क्योंकि ये तो आपको बाकायदा पढ़ाया गया है। ठीक है, आपको लिख करके भेजा भी गया है, बस लेटर्स डिफरेंट हैं यहाँ पर, अदरवाइज ये चीज़ आप पढ़ चुके हैं। तो इसका कोई टेंस बताएगा, सीगा क्या है? तर्जुमा देख लें तो आपको थोड़ा अंदाज़ा भी हो जाएगा, फेल मुजारे मजहूल। जी ठीक है, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, मुजारे मजहूल है, फेल मुजारे मजहूल। ठीक है, और बाकी भी तो दो बातें होती हैं, वाहिद है कि तस्निया है कि जमा है। वाहिद मुजक्कर गायब, फेल मुजारे मजहूल है ना, माजी मजहूल नहीं है। ठीक है, इसके भी शुरू में अलामत मुजारे लगी हुई है, या वाली। ठीक है, वेटिंग फॉर नेम, आप अपना नाम भी अगर बता दें। एनीवेज, तो ये भी जो है ना मुजारे मजहूल ही है। ठीक है, अच्छा इसके भी हरूफ असली जो है वो तीन है, नफका, ठीक है, नून फा और काफ, ये इसके हरूफ असली हैं। ठीक है, इसके हरूफ असली तीन हैं, और बाब जो है ना इसका वो क्योंकि इसके हरूफ असली तीन ही है इसके अंदर। ठीक है, और या जो है वो अलामत मुजारे का या है, तो इसमें कोई हरूफ जायदा नहीं है, कोई एक्स्ट्रा हर्फ नहीं है, तो इससे क्या पता लगा कि ये सुलासी मुजर्रद फेल है। ठीक है, सुलासी मुजर्रद फेल है। तो सुलासी मुजर्रद के तो 6 बाब होते हैं, नसरा यंसुरु वगैरह, राइट। तो फिर ये उन बाबों में से कौन से वाले बाब पे आता है? ये आएगा नफका यनफिकु, ये लिखा हुआ है नीचे एक्चुअली, नफका यनफिकु, नफका यनफिकु, हाँ नफका यनफिकु, दरबा यद्रिबु बाब से होता है, नीचे लिखा हुआ नहीं है, दरबा यद्रिबु बाब से होता है, नफका यनफिकु व नुफका युनफकु, ठीक है। तो नुफका युनफकु यानी युनफकु जो है वो मजहूल का सीगा हो गया, मुजारे मजहूल, ठीक है। मतलब इसका होता है खर्च करना, ठीक है। नफका यनफकु या नफका यनफकु नफकन, ठीक है, नफकन का मतलब खर्च करना, ठीक है। तो युनफकु का मतलब कि वो खर्च करता है या वो खर्च करेगा, और ला युनफकु वो खर्च नहीं करता है या वो खर्च नहीं करेगा, ठीक है। मिन हु, मिन हर्फ जर है जिसका तर्जुमा से करते हैं, और हु की जमीर जो है वो यानी जो प्रोनाउन हु है वो पॉइंट कर रहा है किस तरफ पॉइंट कर रहा है जी? इस जमीर का मरजा किधर है, मरजा रुजू करने की जगह। मिन्हू में जो हु की जमीर है इसका मरजा किधर है, या इस प्रोनाउन का नाउन किधर है, क्या है? जी माशाल्लाह, ठीक है, कंस, ठीक है, यानी उस खजाने में से की बात हो रही है ना, मिन्हू यानी मिन कंस, ठीक है, यानी उसमें से खर्च नहीं करता है, फी सबीलिल्लाही अल्लाह के रास्ते में। फी हर्फ जर है और सबील रास्ते को कहते हैं, ये इस्म हो गया, इसम जामिद एक किस्म होती है इसम की, तो ये वो हो गया सबील मीनिंग रास्ता, और अल्लाह अल्लाह ताला का इसम जाती है, ठीक है। लुगात भी हो गई और तशरी पढ़ लेते हैं, और फिर इसकी कुछ एक्सप्लेनेशन आज की क्लास में करने की कोशिश करते हैं, बाकी कल फिर देखेंगे। तशरी में फरमाते हैं कि जब आदमी पर अल्लाह ताला ने ये एहसान फरमाया कि उसको अपना महबूब इल्म सिखाया, ठीक है, तो ये महबूब इल्म की बात हो रही है, बल्कि हकीकत यह है कि यही इल्म कहलाने के काबिल है। बाकी चीज़ों को क्या कहते हैं, ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग एंड आर्किटेक्चर एंड बाकी सी सारी चीज़ें, उनको फिर क्या कहते हैं? अगर ये इल्म जो है वो ये है जी, उसको फन कहते हैं, हुनर भी कह सकते हैं और फन कहते हैं, फनून, फन, ठीक है, इंग्लिश वाला फन नहीं, उर्दू वाला फन, ठीक है। तो यही महबूब इल्म भी है अल्लाह ताला का, यानी शरीयत का इल्म, दीन का इल्म, मारफत का इल्म वगैरह। तो अब उसके लिए भी मुनासिब नहीं कि इसको वो छुपाए, बल्कि इस पर उस वक्त दो बातें लाजिम हैं, एक ये कि उस पर अमल करे, दूसरे ये कि दूसरे को भी सिखाए। यही मतलब है इल्म से फायदा उठाने का, ठीक है। अब इसमें जो है ना, इनसे वैसे तो इख्तलाफ किया जा सकता है, लेकिन बहरहाल हम अपने कॉन्टेक्स्ट से बात कर रहे हैं कि यहाँ पर जो है वो उस पर अमल करे, ठीक है। थोड़ी सी इनकी बातें जरा पीछे भी हमने ऐसी देखी थी जो कि यानी उसके अंदर बज़ाहिर इतनी सेंस नहीं बन रहा था, और दूसरे जो हदीसें हैं और उलूम हैं उनसे वो मुनासबत नहीं होती थी उसके अंदर। बहरहाल ये कह रहे हैं कि दो चीज़ें लाजम होती हैं, ठीक है, कि उस पर अमल भी करें और दूसरे कि दूसरे को सिखाए भी। यही मतलब है इल्म से फ़ायदा उठाने का, ठीक है भाई। अब बात तो उन्होंने एक तरीके से सही कही है, यानी इस बात का इब्तिदा से हम इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन इंतहा से इख्तलाफ नहीं कर सकते, ठीक है। इब्तिदा इसकी क्या थी कि दो बातें लाजिम हो गई उसके ऊपर, ठीक है, तो इससे जो है ना वो आप इख्तलाफ कर सकते हैं कि सिखाना जो है ना उसके ऊपर लाजिम नहीं होता, ठीक है, उसके ऊपर अमल करना लाजिम हो जाता है, ठीक है। लेकिन जो इसकी इंतहा है वो इंतहा क्या है कि इल्म से फायदा उठाना, यही है। तो भाई जब वो खुद अमल करेगा तो फिर तो उसको फायदा 100% मिलेगा ही, ठीक है, लेकिन जब दूसरे को सिखाएगा, ठीक है, तो उससे तो उसको फायदा ही फायदा होगा ना, क्योंकि दूसरा उसके सिखाने की वजह से जब अमल करेगा तो उसका सवाब इसको भी मिल रहा होगा। तो फायदे की बात जहां पर है उससे तो हम बिल्कुल भी इख्तलाफ नहीं कर सकते, लेकिन लाजिम होने की बात, और लाजिम होने का मतलब हम लेते हैं कि जवाबदेह होगा, ठीक है, तो उसके अंदर फिर इख्तलाफ किया जा सकता है कि उसके ऊपर क्या सिखाना भी लाजिम होता है कि सिखाना लाजिम ही होता है, ठीक है ना। बहरहाल इसके बारे में काफी तफसील है जो कि आगे आएगी इंशाल्लाह। ये बात समझ में आई कि इब्तिदा क्या है इसकी, इस जुमले की, और इंतहा क्या है? इन दोनों में फर्क है, इब्तिदा में और इंतहा में फर्क है, ठीक है। इंतहा फायदे वाली बात हो रही है, और इब्तिदा इब्तिदा जो थी वो लुजूम वाली बात हो रही थी, ठीक है। अल्लामा तीबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि यहाँ इल्म को माल के साथ जो तशबीह दी गई है वो सिर्फ फायदा हासिल ना करने और खर्च के एतबार से है, कि जिस तरह माल वाले के पास माल है मगर वो माल को खर्च नहीं करता, इसी तरह ये इल्म वाला भी नहीं कर रहा और खुद भी फायदा हासिल नहीं कर रहा। ठीक है, तो ठीक है, जिस तरह माल का जो है ना वो उससे फायदा कब होता है, जबकि उस माल को वो खर्च करे, वरना माल जो है वो तिजोरी में पड़ा हुआ है, बैंक अकाउंट में पड़ा हुआ है और उसको वो खर्च नहीं कर रहा, तो फिर उसका कोई फायदा तो नहीं है ना आज के ऊपर। ठीक है, तो इल्म की जो तशबीह यहाँ पे दी गई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वो भी इसी तरीके से है कि उसको इस्तेमाल करेगा उस इल्म को तब होगा ना, वरना किताबें पढ़ी हुई हैं और वो जो अपनी जिंदगी गुजारता है वो यानी गैरों के तरीके पे गुजारता है। ठीक है, कोई हिंदुओं के तरीके पे गुजार रहा है, किताबें उसने दीने इस्लाम की पढ़ी हुई है और जिंदगी गुजार रहा है हिंदुओं के तरीके के ऊपर या ईसाइयों के तरीके के ऊपर, ठीक है, या मजूसियों के तरीके के ऊपर, तो क्या होगा ये? ठीक है, ये यानी कि वो अपने इस इल्म को खर्च नहीं कर रहा है, इस्तेमाल नहीं कर रहा है इसको। ठीक है, अच्छा, आगे फरमाते हैं कि हजरत सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इल्म आवाज देता है कि जो शख्स मुझ पर अमल करेगा तो मैं बाकी रहूंगा, वरना जो अमल नहीं करेगा तो मैं भी चला जाऊंगा। ठीक है, यानी ये जो इल्म नाफे होता है, महबूब इल्म जो होता है, तो ये अमल की वजह से रहता भी है और अमल जब ना किया जाए ना तो फिर ये रुखसत भी हो जाता है। ठीक है, यानी ये फिर इल्म आपके पास प्रिजर्व रहता भी नहीं है। ठीक है, इसको लॉक एंड की के अंदर नहीं रख सकते, इसको अपने पास लॉक रखने के लिए अमल करना जरूरी है, तो अमल ही इसकी लॉक एंड की है। ठीक है, एक आरिफ का मकूला है, इल्मुन बिला अमलिन का हमलिन अला जमलिन, कि इल्म बगैर अमल के ऐसा है जैसे ऊंट के ऊपर भार, बोझ। ठीक है, खुलासा ये हुआ कि साहिब इल्म को चाहिए कि जब अल्लाह ताला उसको अपना इल्म अता फरमाए तो उसको चाहिए कि उसको खूब दूसरे तक पहुंचाए, इसी तरह साहिब माल को भी चाहिए कि अपने माल को इलाए कलिमतुल्लाह में खर्च करे। ठीक है, यानी माल को अल्लाह के रास्ते में खर्च करे। ठीक है, तो इस हदीस के अंदर उसको एक अच्छी चीज के तौर पर बयान किया गया ना, सिर्फ ये नहीं कि माल को जो है वो अपने खाने पीने में खर्च कर दे, अपने पहनने ओढ़ने में या गाड़ी खरीदने में खर्च कर दे। ठीक है, बल्कि उसको अल्लाह के रास्ते में खर्च करे, यानी अल्लाह के दीन की इआनत के लिए, अल्लाह के दीन को एस्टैब्लिश करने के लिए, अल्लाह के दीन की खिदमत करने के लिए, जो भी इसको आप कहना चाहें। ठीक है, तो उसमें खर्च करना जो है वो एक ऐसी अच्छी चीज है कि उसको उससे तशबीह दी गई इल्म के ऊपर अमल करने को। ठीक है, और इल्म के ऊपर अमल करने से जन्नत मिल जाती है। ठीक है, इखलास के साथ जो भी इल्म के ऊपर अमल करता है उसको जन्नत मिल जाती है। तो ये ऐसे ही है कि जैसे कि माल को अल्लाह ताला के रास्ते में खर्च करना, यानी माल को अल्लाह ताला के रास्ते में भी जो खर्च करता है ना उसको भी जन्नत जन्नत मिल जाती है, इखलास के साथ, जाहिर है, ये तो एक शर्त है। ठीक है, अच्छा, अब यहां पर जो ये सारी बात हुई थी ना शुरू में कि युन्तफाउ जो है वो मुजारे का, ये मुजारे मजहूल का सीगा है। ठीक है, तो मुजारे मजहूल का जो सीगा है इससे क्या पता लगता है कि इससे नफा पहुंचाना मुराद नहीं है बल्कि इससे नफा उठाना मुराद है। ठीक है, कि यानी वो जो बंदा है ना वो उससे फायदा उठाए, तो फायदा उठाने के अंदर जो है फिर ये भी आ जाएगा कि वो उसके ऊपर अमल करे और उसको जो है वो दूसरों के ऊपर खर्च भी करे। ठीक है, तो दूसरों के ऊपर खर्च करने से क्या होगा कि उसको फायदा हो रहा होगा, यानी वो एक फायदा अपने ऊपर उसको लागू करने से ये फायदा है। ठीक है, और दूसरा फायदा क्या है कि जब दूसरों को सिखाएगा तो उसको फायदा होएगा। ठीक है, तो अगर वो नहीं करेगा ये दोनों काम, यानी ना तो खुद अमल करेगा और ना दूसरों को ये पहुंचाएगा, तो गोया कि वो घाटे में रहेगा, वो नुकसान में रहेगा। ठीक है, तो यहां पर तो इतनी ही बात है। ठीक है, फायदे से रिलेटेड बात है, फायदा उठाने से रिलेटेड बात है। ठीक है, अलबत्ता ये जो एक हमारे मुआशरे के अंदर एक कॉन्सेप्ट बना हुआ है ना कि यानी आलिम के लिए ये लाजिम है कि अगले बंदे को पढ़ाए। ठीक है, तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये कॉन्सेप्ट जो है वो वैसे तो कोई इतना बुरा कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, कि हम उसकी नफी करते फिरें। ठीक है, यानी हमें कोई जरूरत नहीं है इसकी नफी करने की, ये तो एक बहुत अच्छी बात है कि आलिम को पढ़ाना ही चाहिए, हम दूसरों को फायदा पहुंचाना ही चाहिए। ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है, तो हम क्यों उसके पीछे पीछे हाथ धो के पड़ जाएं कि नहीं नहीं जी ये लाजिम नहीं होता, लाजिम नहीं होता। ठीक है, क्यों पड़े हुए हैं इसके पीछे? ठीक है, क्यों ये प्रूफ करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये लाजिम नहीं है, ठीक है, उसकी वजह कोई बताएगा कि ये जरूरत जरूरत ही क्यों महसूस हो रही है कि इसको प्रूफ किया जाए कि दूसरों को सिखाना लाजिम नहीं है, कोई बताएगा इसकी वजह? अदरवाइज तो ये एक बहुत अच्छी बात है ना कि दूसरों को फायदा पहुंचाना चाहिए और पहुंचाएगा तो उसको फायदा ही होगा, ठीक है, दूसरे लोग उसके सिखाए हुए इल्म के ऊपर अमल करेंगे तो उसके तो दर्जात बहुत बुलंद होंगे, ठीक है, सदका जारिया बन जाएंगे उसके लिए उसके सारे के सारे शागिर्द। तो फिर क्यों ये बात जरा नॉट टू मेक एन ऑब्लिगेशन, मतलब वाई नॉट टू मेक एन ऑब्लिगेशन, ये मैं सवाल कर रहा हूं ना। पहले अपनी इसलाह और अपने आप का जवाब देना है। इल्तिजाम, हाँ इल्तिजाम की नफी क्यों करना चाह रहे हैं हम, यानी क्यों उस पर इवन हम टाइम स्पेंड करना चाह रहे हैं? हर इल्म सीखने वाला सिखाने के काबिल नहीं होता। ठीक है, ये बात आपने अच्छी करी है, हर सीखने वाला सिखाने के काबिल भी नहीं होता, ठीक है, ये भी एक अच्छी बात करी है आपने कि वाकई ऐसा होता है, हर बंदा नहीं आगे इल्म को सिखा सकता, हर एक को टीचिंग स्किल्स नहीं आती हैं, ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल्स हर एक के पास नहीं होती, ठीक है, सो इट कैन बी यूज इन नेगेटिव वे। नेगेटिव वे अगेंस्ट वॉट, ये आपका जवाब सही डायरेक्शन में, सबको सिखाने सिखाना इसकी मसूलियत में नहीं होता। जी बिल्कुल, अथॉरिटी, चलो वो अथॉरिटी की डिस्कशन यहाँ पे नहीं करना चाह रहे हैं, ठीक है, ये इसलिए क्योंकि शैतान जो है ना इसको फिर उलमा के खिलाफ बदगुमानी का बायस ना बनाए लोगों के दिल में, ठीक है, कि हर आलिम जो है ना उसके लिए लाजिम था पढ़ाना। अब जो आलिम नजर आएगा जो कि पढ़ाने का काम नहीं कर रहा, अब शैतान इसको इस्तेमाल करेगा उस आलिम के खिलाफ बदगुमानी फैलाने के लिए, ठीक है, कि ये तो आलिम ही नहीं है, ये तो आलिम कहलाने के काबिल ही नहीं है, ये तो गुनाहगार है क्योंकि दूसरों को नहीं पढ़ा रहा। भाई क्यों नहीं पढ़ा रहा, कोई वजह हो सकती है ना इसकी, भाई हो सकता है उसके अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स ना हो, ये भी एक वजह हो सकती है, पढ़ाने की काबिलियत ना हो उसके अंदर, और ये भी वजह हो सकती है कि उसने पढ़ाने की कोशिश करी हो लेकिन कोई पढ़ने के लिए तैयार ही ना हो, ठीक है ना, ऐसे भी तो वक्त होता है ना मुआशरे के ऊपर कि आलिम तो पढ़ाना चाह रहा है सिखाना चाह रहा है लेकिन एक बंदा भी पढ़ने के लिए तैयार नहीं है, ठीक है, तो ऐसे में ना उसकी जिम्मेदारी नहीं होती है कि हर एक को पकड़ पकड़ करके उस बैठा करके इल्म पढ़ाए, नहीं, ये जिम्मेदारी नहीं होती है, ठीक है, उसको इस सूरत के अंदर वो अपने काम के अंदर मशगूल हो जाए, इल्म के ऊपर अमल करना उसके लिए काफी होगा, अगर अवाम उससे पढ़ने के लिए तैयार नहीं है ना तो ये उसकी उसका हेडेक नहीं है अब, ठीक है, उसकी जिम्मेदारी नहीं है, ठीक है, तो अब वो अपने बेशक तसनीफ के काम के अंदर लग जाए, मजीद किताबें पढ़ने के अंदर लग जाए, ठीक है, और जो उसने इल्म पढ़ा है उसके ऊपर अमल करना तो उसके ऊपर वाजिब है, फर्ज है, ठीक है, तो अमल के अंदर लग जाए, अपने इल्म के ऊपर अमल के अंदर लग जाए, ठीक है, तो इस वजह से ना कुछ लोग जो है ना हमारे यहाँ जरा एक्स्ट्रा स्मार्ट किस्म के जो दीनदार बन जाते हैं ना किताबें पढ़ पढ़ करके, तो वो ना हर एक बहाना यूज करते हैं उलमा के खिलाफ बदगुमान होने के लिए और बदगुमानी को फैलाने के लिए, ठीक है, और इसकी वजह से वो बहुत नुकसान करते हैं मुआशरे के अंदर, बहुत ज्यादा नुकसान करते हैं, राइट, तो उलमा के खिलाफ बदगुमानी एक इतना बुरा जहर है कि इस जहर से हमें हर सूरत में बचने की कोशिश करनी है, इसलिए कि जब ये बदगुमानी फैल जाती है ना तो फिर अवाम जो है ना वो अप फॉर ग्रैब्स हो जाते हैं शैतान के लिए, ठीक है, और यही चीज हम नहीं चाहते हैं कि अवाम उन्नास जो है वो शैतान के हाथों में खिलौना बन जाए, क्योंकि उलमा जो होते हैं ना वो उसको अवाम उन्नास को शैतान के इन्फ्लुएंस से रोकने का काम करने के लिए अल्लाह ताला ने सबब के तौर पर दुनिया में बनाए हैं, ठीक है, तो बदगुमानी जो है ना ये बहुत बुरी चीज है उलमा के खिलाफ, खुसूसन जब ये हो जाए, ठीक है, इस वजह से इस बात को हम क्लियर करें कि पढ़ाना जो है वो लाजिम नहीं। इन्होंने तो अल्हम्दुलिल्लाह यकीनन इन्होंने अच्छी नीयत के साथ और खैर ख्वाही के साथ ये बात लिख दी है, हो सकता है इनके दिल के अंदर ये बात ना आई हो, ठीक है, लेकिन यानी इस बात को अच्छा, फिर वो जो होता है वो वाली हदीस पर हमें याद आती है, और वो हदीस भी जो याद आती है ना वो भी जरा मैं आपको रेफरेंस उसका दिखा दूँ, वो जो हदीस याद आती है ना कि जो अजाब आया था तो अजाब आने में आया था ना कि जी एक बैठा हुआ है, ठीक है, तो वो फिर अल्लाह ताला ने फरमाया था उसी से शुरू करो, तो वो ना हम बहुत मिस यानी याद ही रहती है हमें वो एक्चुअली हदीस है क्या, ठीक है, तो 525 पेज अगर आप रौज़ातुत तालिबीन का खोलें तो हदीस जो है ना वो यहाँ पे मनकूल भी है جس کا ترجمہ ہی میں آپ کے سامنے پڑھ دوں کہ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ فلاں شہر کو جہاں کے حالات اس طرح کے ہیں ان کے باشندوں سمیت الٹ دو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ میرے پروردگار، اس شہر میں تیرا فلاں بندہ بھی ہے کہ جس نے ایک لمحے بھی تیری نافرمانی نہیں کری۔ ٹھیک ہے، تو بھی نافرمانی نہیں کری کا مطلب کیا ہے کہ اس کے پاس علم تھا کہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کیا چیز ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کیا چیز ہوتی ہے، اور اس نے بالکل اللہ کی نافرمانی نہیں کری۔ ٹھیک ہے، ایک لمحے بھی تیری نافرمانی نہیں کری۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اس شہر کو اس کے اوپر الٹ دو، یعنی اسی شخص سے جو ہے نا عذاب کی ابتدا کرو۔ کیوں؟ کیونکہ اس شخص کے چہرے کا رنگ ان لوگوں کے گناہوں کو دیکھ کر ایک لمحے کے لیے بھی نہیں بدلا۔ ٹھیک ہے، یہ جو ہے نا ایک لمحے کے لیے بھی نہیں بدلا، اس کا مطلب جو ہے نا ہم اس طرح سے لے نکالتے ہیں کہ اس نے لوگوں کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں کیا۔ ٹھیک ہے، لیکن نہی عن المنکر اور امر بالمعروف والا معاملہ یہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اس نے ایک دفعہ کوشش کری، لو ناکام ہو گئے، ناکام ہو گیا اس کے اندر۔ ٹھیک ہے، تو ایسا اگر وہ کر لیتا نا تو اس کی تشریح میں بھی آپ پڑھ لیے گا، اور ویسے بھی ان جنرل بھی اس کی تشریح ایسی ہوتی ہے کہ اگر ایک بندے نے امر بالمعروف نہیں عن المنکر کی اپنی سی کوشش کر لی، دعوت و تبلیغ کی کوشش کر لی، لوگوں کو ترغیب دینے کی کوشش کر لی نیکی کی اور گناہوں سے روکنے کی، تو اس کے اوپر سے یہ ریسپانسبلٹی اتر جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہ دل میں برائی کو برائی سمجھتا رہتا نا تو اس کے اوپر سے عذاب کی ابتدا نہیں ہوتی، کیونکہ یہ ایمان کا آخری درجہ ہے۔ اگر آپ تم اگر ہاتھوں سے نہ روک سکو تو زبان سے روکنے کی کوشش کرو، زبان سے نہ روک سکو یعنی ہاتھوں سے روکنے کی اتھارٹی تمہارے پاس نہیں ہے، اگر اتنی پاور، اتنی اتھارٹی، اتنا سلطان تمہارے پاس نہیں ہے تو زبان سے روکنے کی کوشش کرو۔ زبان سے روکنے کی سلطان، اتھارٹی، پاور تمہارے پاس نہیں ہے تو دل میں برا سمجھو۔ ٹھیک ہے، یہ جو شخص تھا اس کا کیا معاملہ تھا کہ اس کے چہرے کا رنگ متغیر نہیں ہوا۔ کیا مطلب رنگ متغیر نہیں ہوا؟ کہ برائی کو دیکھ کر کے اس کے دل میں کوئی برائی، نفرت پیدا نہیں ہوئی۔ ٹھیک ہے، بس کرتے ہیں جو لوگ کرتے ہیں سو کرنے دو، میں اپنا کام کر رہا ہوں بیٹھ کر کے، بس۔ اس کو جو ہے نا نوجوان قسم کے لوگ جو ہے نا وہ اس طرح استعمال کرتے ہیں کہ نہیں، جلوس نکالنا چاہیے تھا اور پتھر مارنے چاہیے تھے اور شیشے توڑنے چاہیے تھے اور گاڑیوں کو آگ لگانی چاہیے تھی کہ یہ ہو کیسے رہا ہے ہمارے شہر کے اندر۔ ٹھیک ہے بھائی، ہمارے علماء نے کبھی یہ کام نہیں کیا، تو علماء کو سمجھ میں نہیں آتی حدیث مبارکہ، صرف آپ ہی کو سمجھ میں آتی ہے حدیث مبارکہ، رائٹ؟ وہ کیوں نہیں شیشے توڑتے، وہ کیوں نہیں پتھر اٹھا کے ڈنڈے مارتے لوگوں کو؟ تو بھائی یہ نہیں ہے انڈرسٹینڈنگ ان حدیثوں کا۔ ٹھیک ہے، ویسے بھی حدیثیں موجود ہیں کہ عالم جو ہے نا وہ عالم با عمل، اپنے علم پر عمل کرنے والا عالم۔ قرآن آخرت کے اندر بھی کہ جو یعنی جو سوال ہوگا نا، پانچ سوال کہ جن کے بغیر کھسکنے نہیں دیا جائے گا، کھسکنے نہیں دیا جائے گا، وہ پانچ سوال کون سے ہیں؟ ٹھیک ہے، کسی کو یاد ہے علم سے متعلق وہ کیا سوال ہے؟ ان پانچوں میں سے علم کے متعلق کیا سوال ہے؟ پانچ میں سے ایک ہے علم کے متعلق، وہ کیا ہے؟ یاد ہے کسی کو؟ جی، علم پر عمل کیا کہ نہیں کیا، جو علم سیکھا اس پر عمل کیا کہ نہیں۔ ٹھیک ہے، یہ نہیں سوال ہے کہ علم جو تم کو میں نے سکھایا وہ دوسروں کو سکھایا کہ نہیں۔ ٹھیک ہے، علم پر عمل کا سوال کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو لازم نہیں ہے پھر ہمارے اوپر دوسروں کو سکھانا۔ ہاں، آپ نے کوشش کری تاکہ آپ کو نفع ہو، لیکن لوگوں نے اگر آپ کو لفٹ نہیں کرائی نا تو پھر آپ اپنے کام سے کام رکھیں۔ ٹھیک ہے، اپنے علم کے اوپر عمل کریں، گناہوں سے بچیں۔ ٹھیک ہے، بے شک آپ تصنیف و تعریف کا کام کر لیں۔ ٹھیک ہے، جو ایم سی کا تھا اس میں، ہاں ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بارے میں ایک دو باتیں رہ گئی ہیں لیکن ٹائم ہمارا پورا ہو چکا ہے، تو انشاءاللہ اگلی کلاس میں کریں گے۔ کل ہو سکتا ہے کلاس نہ ہو، میں کوشش کروں گا کہ پہلے سے واٹس ایپ کر کے آپ کو بتا دوں۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر ہم آج کی کلاس ختم کرتے ہیں، اگر کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں، ایک دو منٹ ہم مزید دے سکتے ہیں اس کے لیے۔ اگر ہم لوگوں کے سامنے کوئی گناہ کی بات سامنے آئے تو اسے روکنا چاہیے یا دل میں برا سمجھے، یا ان کیا گھر والوں کو سکھانا ضروری ہے؟ پہلے سوال کا جواب بھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں نا ابھی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے کہ اگر تم روک سکتے ہو، تمہارے پاس اتھارٹی ہے ہاتھ سے روکنے کی، ठीक है, यानी जिन लोगों को तुम देख रहे हो वो बुरा काम करते हुए, अगर तुम्हारे पास उनको रोकने की अथॉरिटी है, ठीक है, फसाद क्रिएट किए बगैर, ठीक है, तुम्हें सुल्तान बनाया गया है, तुम्हें सुल्तान सुल्तानियत दी गई है, ठीक है, तो तुम उनको रोक सकते हो अगर हाथ से, तो तुम रोक दो। मिसाल के तौर पर तुम्हारे बच्चे, ठीक है, वो तुम्हारी रैयत के अंदर है, या तुम अगर शहर के गवर्नर हो, ठीक है, शहर के मेयर हो, या जो भी शहर का एक बड़ा होता है जिसके पास अथॉरिटी होती है, अब वो शहर के अंदर लोगों को देख रहा है गलत काम करते हैं, पुलिस पुलिस चीफ है, ठीक है, उसके पास अथॉरिटी है, अल्लाह ताला ने दी है, तो उसको हाथ से रोकना चाहिए, अगर नहीं रोकेगा ना तो गुनाहगार होगा, ठीक है, उसको अपनी पुलिस फोर्स यूज करनी है रोकने के लिए, ठीक है, और अगर उसके पास नहीं है फोर्स तो फिर जो है जुबान से रोकने की कोशिश करें, यानी तब उनको तरगीब दे बुरे काम से रोकने के लिए, और राइट, तो भाई अथॉरिटी नहीं है, जब भी तो जुबान से रोकने की कोशिश करेंगे ना, अगर अथॉरिटी थी तो फिर तो उसके ऊपर लाजिम है हाथ से रोकना, यानी फोर्स इस्तेमाल करना, फिजिकल फोर्स, लेकिन अथॉरिटी नहीं है जब भी तो जुबान से रोकेगा ना, और जुबान से रोकने की भी अथॉरिटी नहीं है, यानी अगला बंदा उसको उठा के एक डंडा मारेगा अगर जुबान से उसको कुछ कहने की कोशिश करी, ठीक है, तो इसको कहते हैं कि जुबान से रोकने की भी अथॉरिटी नहीं है, ठीक है, क्योंकि आगे से जान का खतरा है या अमन अमान का खतरा है, इज्जत का भी खतरा हो सकता है, तो जुबान से भी रोकने की अथॉरिटी नहीं है। अब दिल से रोकना, दिल से बुरा समझना, और ये आखिरी दर्जा है, अगर दिल से बुरा नहीं समझेगा बल्कि कहेगा हु केयर्स, ठीक है, या ये कि सब चलता है जी, मैं नेकी कर रहा हूं तो जरूरी तो नहीं है दूसरे लोग भी नेकी करें, ठीक है, वो कर रहे हैं जो कर रहे हैं, सो हम आपस में मिलजुल करके रहना चाहिए, ठीक है, तो ये जो है ना फिर ईमान का दर्जा ही नहीं है इसके अंदर, इसके अंदर तो फिर ये यानी फिस्क और कुफर वाली बातें इसके अंदर आ गई ना। इल्म क्या घर वालों को सिखाना जरूरी है, फराइज और वाजिबात का और गुनाहों का, ठीक है, कि क्या चीज गुनाह है जिससे कि बचना फर्ज है, तो ये इल्म जो है वो अपनी रईयत को सिखाना जरूरी है, ठीक है, और जाहिर है आपके अगर घर वाले हैं, बीवी है, बच्चे हैं, तो ये आपकी रईयत के अंदर आ गए, बिल्कुल जरूरी है, ठीक है, चलो टाइम भी ज्यादा हो गया, तो मुझे भी कुछ काम थे, अगली क्लास भी शायद मैं आज ना ले सकूँ, तो क्लास खत्म करते हैं, जज़ाकुल्लाह खैर, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।